अज्जवमिलेच्छ खंडे भोग मही सुविकु भोग भूमिसु मण्या हवन्ति दुविहा निवित्ति अपुण्णगा पुण्णा। अज्जव मिलेच्छ खंडे, अज्जव यानी आर्य और मिलेच्छ यानी मिलेच्छ, ऐसे दो प्रकार के खंड होते हैं। संख्याओं में आर्य खंड एक रहता है और मिलेच्छ खंड पांच होते हैं। इनमें भोग महिसु व कुभोग भूमिसु, भोग भूमियां और कुभोग भूमियां होती हैं, और मणुया दुविहा हवंती। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, निवृत्त अपुण्णगा और पुण्णा, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। क्या तीन भेद होते हैं जीवों के, लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक। तो इन तीनों का अर्थ आपको समझ में आया था, लेकिन अभी चूंकि स्मृति में स्पष्ट नहीं होगा तो एक बार फिर सुन लो। लब्धि अपर्याप्तक का मतलब ये है कि पर्याप्तक अवस्था की उपलब्धि उसको नहीं हो सकती। लब्धि अपर्याप्तक मतलब प्राण धारण की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, और उस शक्ति की पूर्ति जब तक वो नहीं कर पाता तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जीव को लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं। लब्धि अपर्याप्तक जीव गर्भज नहीं होता और उपपाद जन्म वाला नहीं होता, नियम से सम्मूर्छन ही होता है। और सम्मूर्छन नियम से नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, ये भी एक नियम है। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी न देवा, वो तो खैर न देवा तो अलग बात होगी, लेकिन नपुंसक नहीं, नपुंसक कौन होते हैं तो उसकी बात है। तो एक लब्धि अपर्याप्तक, दूसरे वो हैं निवृत्त अपर्याप्तक। अभी अपर्याप्तक है लेकिन निवृत्ति मतलब रचना जारी है, पर्याप्तियां पूर्ण होगी, होने वाली है, ऐसे जीव को निवृत्त अपर्याप्तक बोलते। निवृत्ति का अर्थ कल बतलाया था, निवृत्ति निवृत्ति और निर्वृत्ति, तीन शब्द थे। निवृत्त पर्याप्तक का मतलब जो पर्याप्तियों की रचना करने में लगा है अभी पूर्ण नहीं है, और पर्याप्तक का मतलब होता है कि जिनकी छहों पर्याप्तियां अथवा जिस गति में जितनी पर्याप्तियां हो सकती है जहां जहां पर उतनी पर्याप्तियों को उसने पूर्ण किया, वैसे चारों गतियों में पंचेंद्रीय सैनी पर्याप्तक जीव पाए जाते हैं, लेकिन असैनी जीव तीन गतियों में नहीं पाए जाते। बगैर मन वाले जो जीव होते हैं वो तीन गतियों में नहीं होते। देवों में मन बगैर के जीव नहीं हो सकते, नरकों में असैनी जीव नहीं हो सकते, और मनुष्य भी कभी असैनी नहीं होता। हर मानव के पास मन होता है। तो बचे कौन, तिरंज। तिरंज गति में ही असैनी जीव पाए जाते हैं। तो निवृत्त पर्याप्तक का मतलब जो पर्याप्तियां पूर्ण कर रहा है, और पर्याप्तक का अर्थ जो पूर्ण कर चुका है, और अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक का मतलब होता है कि जो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर सकता, बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मनुष्य दो प्रकार के बताए, कहां पर, भोग भूमियों में और कुभोग भूमियों में। ये भोग भूमि और कुभोग भूमियां जो होती है ये कर्म भूमि से भिन्न है। भोग भूमियों में तीन भेद हैं, उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि। तो यहाँ के जो जीव होते हैं वो नियम से देवगति में ही उत्पन्न होते हैं, और कोई गति नहीं होती भोग भूमिया जीवों की। और कुभोग भूमि वाले भी देवगति में ही उत्पन्न होते हैं, मंदकषायी रहते हैं। सिर्फ कुभोग भूमि नाम उसका इसलिए है क्योंकि उनका आकार प्रकार मनुष्य होते हुए भी कुछ जानवरों के समान रहता है, है मनुष्य, लेकिन कान इतने बड़े बड़े हैं कि पूरे नीचे तक चले जाए धरती पर। अलग अलग प्रकार के उनके आकार प्रकार आते हैं शास्त्रों में वर्णन में, अलग अलग प्रकार के वो रहते हैं। किसी का चेहरा जो है वो किसी और जानवर जैसा रहता है। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो कुभोग भूमिया मनुष्य कहलाते हैं, और उनकी आयु एक पूर्व कोटि प्रमाण होती है, और मरकर नियम से देवगति को प्राप्त होते हैं। अगर उनमें किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दृष्टि भोग भूमिया जीव या कुभोग भूमिया नियम से सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि अवश्य ही भवनत्रिक में उत्पन्न होंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान स्वर्ग में चले जाते हैं। सौधर्म ईशान के ऊपर भोग भूमिया जीवों की गति नहीं होती, और देवों से नरक से कोई भी जीव मरकर भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होता। यानी भोग भूमि में जो आगति है प्रवेश, वो प्रवेश मनुष्य और तिर्यंचों से ही होता है और दान की अनुमोदना से होता है। कुपात्रों को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, सतपात्रों को दान देने से या दान की अनुमोदना करने से या दान कराने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भोग भूमि और कुभोग भूमि में निर्वृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक, ऐसे दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते। समुच्छिया मनुष्या अज्जव खंडे सुहोन्ति नियमेण ते पुण लब्धि अपुन्ना नारय देवाविते दुविहा। अब और देख लीजिए मनुष्य और कौन से प्रकार के होते हैं। तो सम्मुच्छिया मनुष्या, सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं। ये तो गर्भज हो गए भोग भूमि को भोग भूमि वाले, और आर्य म्लेच्छ खंड वाले, ये कर्म भूमि की बात हो गई। शुरू में गाथा में देखो आप, पिछली गाथा में 132 में अज्जव म्लेच्छ खंडे, आर्य और म्लेच्छ खंडों में, और फिर भोग महीसु भोग भूमियों में और कुभोग भूमियों में, इन स्थानों पर मनुष्य निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, ऐसे दो प्रकार के होते हैं। अब सम्मूर्छन मनुष्य जो होते हैं लब्धि अपर्याप्तक, वो भी मनुष्य तो हैं, तो वो कहाँ होते होंगे, उसका जवाब देते हुए आचार्य कहते हैं नियमेण अज्जव खंडे सुहंती, नियम से आर्य खंड में होते हैं। आर्य खंड में नियम से होते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, नियम से आर्य खंडों में होते हैं। अब ये आर्य खंड म्लेच्छ खंड क्या बला है, जिनको जानकारी नहीं होगी उनका सिर चकराएगा। तो चाहे भरत क्षेत्र हो या विदेह क्षेत्र हो, उसमें क्या होता है 6 खंड होते हैं, और 6 खंड पर विजय प्राप्त करने वाला जो एक छत्र शासक होता है उसका नाम चक्रवर्ती होता है, 6 खंड का स्वामी। और 6 में से 3 खंडों को जीतने वाला रावण आदि जो होता है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अर्ध चक्रवर्ती का पद सामान्य पद नहीं है, बहुत भारी पुण्य के साथ वो प्राप्त होता है। तो रावण भी अर्ध चक्रवर्ती रहा, लक्ष्मण राम भी अर्ध चक्रवर्ती रहे। तो इनके जो वो होता है वो आधा साम्राज्य होता है, चक्रवर्ती सकल चक्रवर्ती का 6 खंड, अर्ध चक्रवर्ती के 3 खंड। तो राम बलभद्र थे अर्ध चक्रवर्ती को आर्यखंड और 2 म्लेच्छखंड, ऐसे 3 खंड होते हैं। हाँ ठीक है, नहीं आर्यखंड से, क्योंकि शासन उनको यहीं करना है ना आर्यखंड में, इसलिए म्लेच्छखंड का सवाल ही नहीं। वो जो विजयार्थ पर्वत के आगे वाले जो म्लेच्छखंड है वहाँ उनको नहीं जाना पड़ता, उनको सिर्फ इधर जाना पड़ता है, गंगा सिंधु नदी के दोनों तरफ जो है ना म्लेच्छखंड, उधर उनको जाना पड़ता है विजय प्राप्त करने के लिए, दिग्विजय आदि होती है उनकी। और विजयार्थ पर्वत की गुफाओं को पार करके केवल चक्रवर्ती जाता है, और फिर वहाँ से वो विजय करता है, 3 म्लेच्छखंडों को ऊपर से जीत करके फिर वापस लौटता है। भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय का 60,000 वर्ष का वर्णन बहुत सुंदर किया है आदि पुराण ग्रंथ में। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक खंड जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं अयोध्या नगरी में, उस खंड को आर्य खंड कहते हैं, और बाकी जो नदियों के उस पार वाले खंड हैं, गंगा के उस पार वाला खंड एक म्लेच्छ खंड है, फिर गंगा के इस पार वाला एक खंड म्लेच्छ खंड है, और फिर विजयार्थ पर्वत के आगे वाला जो खंड है, आर्य खंड से आगे देखोगे तो विजयार्थ पर्वत के आगे एक म्लेच्छ खंड मिलेगा, और फिर वो नदियां जहां से आ रही है पद्म सरोवर से, ऊपर हिमवान पर्वत है ना, हिमवान पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर, पद्म सरोवर से दो नदियां निकल रही है गंगा सिंधु, तो फिर वो नदियों के उस तरफ विजयार्थ के आगे नदियों के दोनों बाजू एक एक म्लेच्छ खंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विजयार्थ पर्वत के आगे की तरफ तीन म्लेच्छ खंड हो गए, दो नदियां हैं तो फिर वो विजयार्थ पर्वत के आगे वाला भाग तीन हिस्सों में विभाजित हो गया। दो नदियां बहेंगी तो फिर तीन हिस्से होंगे कि नहीं, दो लाइन खींचोगे आप किसी उसमें तो तीन हिस्से हो जाएंगे ना। और इससे भी सरल उदाहरण ले लो आप कि आप अगर किसी फल को दो बार बनाते हैं चाकू से तो उसके टुकड़े कितने होते हैं, तीन। तो उसी प्रकार वो तीन हिस्से हो जाते हैं, तीन म्लेच्छ खंड हो गए। फिर इधर विजयार्थ पर्वत के इस तरफ अपन जहां पर है वो बीच वाला एक आर्य खंड है, और फिर गंगा सिंधु नदी के आगे वाले जो खंड है वो दो म्लेच्छ खंड है। तो इस प्रकार पांच म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड, विदेह क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था है। महाविदेह में 32 जो विदेह हैं, पूर्व विदेह में 16 खंड है, 16 विदेह, और फिर पश्चिम में भी 16 विदेह हैं। तो ऐसे विदेह क्षेत्रों में भी यही व्यवस्था है। तो यहां आचार्य कहते हैं कि सम्मूर्छन मनुष्य नियम से आर्य खंड में पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि अंतर्मार्गणा में ऐसा भी उल्लेख है कि कभी कभी सम्मूर्छन मनुष्यों का अभाव पाया जाता है, कभी कभी सम्मूर्छन मनुष्य शाश्वत हो ऐसा नहीं है, आयु की अपेक्षा से तो है ही नहीं, लेकिन अस्तित्व की अपेक्षा से भी, मौजूदगी की अपेक्षा से भी, जैसे कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जो हमेशा पाए जाते हैं, मिथ्यात्व, अविरत सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थान विरताविरत, छठा सातवां गुणस्थान और तेरहवां गुणस्थान, ये छह गुणस्थान हमेशा मिलेंगे आपको सारी धरती में कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी गुणस्थान स्थायी नहीं है। कई बार ऐसा भी समय आता है कि उन शेष गुणस्थानों में एक भी जीव न हो, पूरे संसार में कोई जीव उन बाकी के गुणस्थानों में होता ही नहीं। जैसे दूसरे गुणस्थान का खाल खाली चल सकता है कभी, तीसरे का भी काल खाली हो सकता है, कोई नहीं है तीसरे गुणस्थान में। आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान का भी समय खाली पड़ सकता है, एक भी जीव नहीं है। चौदहवें गुणस्थान में भी 6 महीने तक एक भी जीव न हो ऐसा संभव है, तो फिर बचे कितने गुणस्थान, 6। तो पहले गुणस्थान में हमेशा जीव रहते हैं, चौथे में हमेशा रहते हैं, पांचवें में हमेशा रहते हैं, छठे सातवें में हमेशा रहते हैं। मतलब याद करने का एकदम सरल तरीका बता देते हैं हम आपको, अब भी आप याद कर लेना एक मिनट में। पहला गुणस्थान हमेशा इसमें रहेंगे कोई ना कोई, फिर चौथे से सातवां 4, 5, 6, 7 इनमें नियम से रहेंगे जीव, कितने हो गए 5, अब बचा एक तो फिर 13वां गुणस्थान है। बस इन गुणस्थानों में जीव नियम से हमेशा पाए जाते हैं। तो ये जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं इनका अस्तित्व भी शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है, कभी कभी सम्मूर्छन मनुष्यों का अभाव हो जाता है, लेकिन होंगे तो कहाँ होंगे, आर्यखंड में। म्लेच्छ खंड में सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते, प्रवचन सार की गाथाओं में और जैसेन स्वामी कृत टीका में सम्मूर्छन जीवों का उल्लेख है कि अपने शरीर के कुछ हिस्सों में उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों के शरीर में, तिरियंचों के शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर पसीना वगैरह अधिक होता है, या फिर जहाँ पर मल एकत्रित हो जाता है, ऐसे स्थानों पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है अपने शरीर में। लेकिन उन्होंने तुलना करके बताया कि पुरुषों के शरीर में अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। मैंने बोले एकस्य विष कणिका एकस्य विष सागर है, मतलब ये हुआ कि अगर इनको विष मान लिया जाए तो पुरुष के शरीर में एक कणिका मात्र है, और फिर महिला शरीर में इनकी उत्पत्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है। समूर्छन जीवों की। तो ये समूर्छन मनुष्यों की बात है, समूर्छन तिर्यंच भी होते हैं, मनुष्य जैसे होते हैं वैसे तिर्यंच होते हैं। तिर्यंचों का वर्णन हो चुका है कल, 85 भेद, 85 की संख्या तो याद रखना है ना। तो ये नियम से आर्यखंड में ही पाए जाते हैं, लेकिन आर्यखंड में नियम से पाए जाते हैं ऐसा उल्टा मत लगाना। तो देखो शब्द आगे पीछे करने से अर्थ कहीं हो जाता है, क्या अंतर हुआ दोनों में? एक वाक्य ये बना कि सम्मूर्छन मनुष्य आर्यखंड में ही पाए जाते हैं, और दूसरा वाक्य क्या बना? सम्मूर्छन मनुष्य आर्यखंड में पाए ही जाते हैं। दोनों में अंतर है कुछ? अभी आपकी निद्रा पूरी तरह से भंग हो गई है, सुबह की सुस्ती चली गई है, क्या अंतर है दोनों में? पाए ही जाते हैं ऐसा नियम नहीं होता, आर्यखंड में ही पाए जाते हैं। ये ठीक है कि अगर पाए जाएंगे तो कहां पाए जाएंगे? आर्यखंड में ही पाए जाएंगे, लेकिन आर्यखंड में पाए ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, ते पुण लब्धि अपुण्णा, वे लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। फिर इसके बाद मनुष्य का वर्णन हो गया, कितने प्रकार के मनुष्य हो गए? 9 प्रकार के हो गए। आर्य और म्लेच्छ खंड संबंधी निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक, भोग भूमि कुभोग भूमि संबंधी, और फिर सम्मूर्छन मनुष्य। ठीक है, 9 प्रकार के हो गए। देखो आर्यखंड संबंधी निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक 2, म्लेच्छ खंड संबंधी निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक 2, कितने हुए? 4। फिर भोग भूमि संबंधी निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक कितने हुए? 6। फिर कुभोग भूमि संबंधी निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक 8 हो गए, और फिर ये लब्धि अपर्याप्तक। 9 प्रकार के मनुष्य हो गए। मनुष्यों को याद करना सरल है, और 85-83 को याद करना कठिन था थोड़ा। मनुष्यों को याद कर लो, अभी हाल कर लो, आगे क्या भरोसा, अभी कर लो। कैसे? तो आर्यखंड वाले मनुष्य निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक 2 प्रकार के, फिर म्लेच्छखंड में भी यही 2 प्रकार के, भोग भूमियों में ये 2 प्रकार के, और कुभोग भूमियों में आर्यखंड म्लेच्छखंड भोग भूमि कुभोग भूमि, 4 स्थानों को पहले याद कर लो। फिर इसमें 2-2 प्रकार के मनुष्य हो गए। अब बचे लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य, तो वो 9वां भेद हो गया मनुष्यों का, सम्मूर्छन होते हो लेकिन आर्यखंड में ही होते हैं ऐसा नियम है, आर्यखंड में होते ही हैं ऐसा नियम नहीं है। अब इसके बाद नारय देवा विते दुविया, और वे जो नारक और देव होते हैं 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार के? निर्वृत्त्य पर्याप्तक और पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक तो होना नहीं है नरक में और देवों में, तो ऐसे नारक और देव भी 2-2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा टाइम है, उसके बाद आज हमारा विचार बना है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र को प्रारंभ किया जाए। पुष्य नक्षत्र है इस समय, कल्याण मंदिर स्तोत्र में आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि ये जो विषय है वो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा भारी रहता है, सिद्धांत का विषय, जीव सिद्धांत का वर्णन चल रहा है अभी यहाँ पर। तो अब अपन कल्याण मंदिर स्तोत्र को प्रारंभ करेंगे। सब लोग जिनवाणी ले आना, नीचे से या ऊपर से, अभी नहीं, अभी थोड़ा गम खाओ बोलते हैं बुंदेलखंड में, थोड़ा सब्र रखो, ये 1-2 गाथा हो जाए थोड़ी, फिर बाद में पर्याप्तियां क्या होती है वो बता रहे हैं। आहार शरीर इंद्रिय निस्सास उस्सास भास मनसाणम, परिणय वावारे सुय जाओ छच्चेव पज जाओ छच्चेव सत्तियो। आहार शरीर इंद्रियां निश्वास उश्वास भाषा और मन, इनकी प्रवृत्ति में होने वाले जो व्यापार मतलब कार्य योग होते हैं, मन वचन काय के प्रवृत्तियां जो होती है, या चेष्टा कह लो, इनकी परिणति रूप जो चेष्टाओं में जाओ जो भी शक्तियां होती है वो छच्चेव 6 ही होती हैं। माने इनकी पूर्ति होने के बाद ही जीव प्राणों को धारण करता है। आहार, आहार का मतलब यहाँ भोजन नहीं है, रोटी सब्जी वगैरह। आहार का मतलब जिन परमाणुओं से अपने शरीर का आकार प्रकार बनता है। अब ये परमाणु, अब जैसे गर्भज प्राणी है तो उसको गर्भ में तो माँ के माध्यम से मिल जाता है, और फिर जन्म लेने के बाद में फिर कुछ समय तक दुग्धपान आदि के द्वारा उसको प्राप्त होता है आहार, और फिर बाकी आहार करने लग जाता है। लेकिन सारे जीव ऐसे कवलाहार से ही जीने वाले नहीं होते। देव और नारक हैं वो कवलाहारी नहीं है। कवलाहारी मतलब ऐसे कौर बना के मुंह में खाने वाले लोग नहीं होते। नरकों के दुखों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जिसने दारू पी है उसको मुंह में गरम गरम वो धातु पिघला हुआ उसके मुंह में डाल देते हैं, वो वेदनाओं के वर्णन के अंतर्गत है। लेकिन वो भूख प्यास भी लगती है उनको, लेकिन कुछ मिलता जलता नहीं है। ऐसी देवगति में भी यही है कि कंठ से अमृत झर जाता है जब उनको भूख लगती है, आहार की इच्छा होती है तब। और फिर पक्षी जो है अंडे के अंदर जब जन्म लेता है तो फिर उसको कोई कवलाहार नहीं मिलता, उसको बस उसका उसके माँ या पिता उसके ऊपर बैठते हैं तो फिर उसकी गर्माहट से उसको पोषण मिल जाता है। तो आहार कई प्रकार के, 6 प्रकार के आहार होते हैं। आहार हो छब्बीहो नेऊ, कौन से 6 आहार होते हैं? अच्छी जानकारी तो थोड़ी थोड़ी है सभी को। तीन आहार जानते हैं, कौन से 3? देखो इसकी एक गाथा आती है, एक गाथा आती है, नो कम कम हारो कवलाहारो ये लेप मा आहारो उजमिणो विय कमसो आहारो छविहो नियो। एक नौकर माहार होता है जो तीर्थंकरों में पाया जाता है, या केवल ज्ञान होने के बाद अन्य केवलियों को भी उसमें उपलक्षण में सम्मिलित कर लेना। तीर्थंकर कहने से बाकी केवलियों को छोड़ मत देना, वहां तात्पर्य केवल इतना है कि परम औदारिक शरीर जिनका बन गया केवल ज्ञान के उपरांत, उनके शरीर की स्थिरता बाकी भोजन से न होते हुए अपने आप जो नौकर वर्गणाएं आएंगी उनके माध्यम से हो जाती है। इन आहारों में मुख्यता कौन में किनकी है वो आगे गाथा आएगी। तो ये गाथा तो ये बता रही कि आहार के 6 भेद हैं, कौन से? एक नौकर महार, दूसरा कर्माहार है। दूसरी गाथा भी हम पढ़ के सुना देते हैं, नौकम मंतिथरे कमण निरये मानसो अमरे कवलाहारो नर पशु ऊजो पक्षीण लिप रुखाणम। तीर्थंकर आदि जो केवल ज्ञानी भगवान है उनका नौकर माहार होता है, माने उनके शरीर को कायम रखने के लिए उनको कोई दूसरे प्रकार का भोजन नहीं लेना पड़ता, लेकिन अपने आप वैसे नौकर वर्गना है, आहार वर्गना है शरीर में खिंच खिंच करके आ जाती है और फिर शरीर की रचना बनी रहती है। कम्मम निरये, कर्माहार जो होता है नरकों में होता है, उनका जो कर्म का उदय होता है वही उनके लिए भोजन है, यानी जो असाता का उदय है उनको, तीव्र दुखों का जो उनको भोग करना पड़ता है, वेदन करना पड़ता है, बस वही उनके लिए भोजन है, भूख सहन करना ही उनका भोजन है। अथवा कर्माहार का मतलब वैकृत शरीर नाम कर्म का उदय है, बस उसी से वो शरीर बना रहेगा, वही उनका आहार है, अलग से उनको कुछ आहरण मतलब ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। फिर नहीं, नौकर्माहार कर्माहार, तीसरा कौन सा था? नहीं, क्रम जो गाथा में क्रम था वो क्या था? कवलाहारो या लेप महारो, कवलाहार का क्रम था। तो कवलाहारो नर पशु, मनुष्य और पशु पक्षियों में कवलाहार होता है, बल्कि मनुष्य और पशुओं में होता है ऐसा कहा है उसमें। और फिर लेप्याहार, लेप्याहार किसका होता है? रुखाणम, वृक्षों का। अभी आजकल चर्चा होती है ना कि जो साधु रात में तेल लगाने देते हैं श्रावकों को, श्रावक लोग सेवा करने आ जाते हैं तेल लेकर के, और अगर जो साधु लगवाने देते हैं तो फिर वो तेल लगाने का मतलब लेप है, और लेप का मतलब है कि एक प्रकार का आहार है, तो फिर उनको दोष लगता है, रात्रि भोजन का दोष लगता है। ऐसी चर्चा है, मतलब हम ऐसे मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे, हकीकत में ऐसी चर्चा है। लेकिन इसमें फिर विचार करने की बात यह है कि अपन क्या है कि कभी किसी की कमी निकालना हो तो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, पर उस कमी को निकालते समय थोड़ा आगे पीछे विचार नहीं कर पाते, क्योंकि कषाय आ जाती है और कषाय में बुद्धि कुंठित हो जाती है। अब विचार ये करो कि अगर इसको शरीर पर लगे हुए तेल को अगर लेपाहार मानोगे, हो सकता है लेपाहार हो, लेकिन अगर उसको रात्रि भोजन मानोगे, अगर रात्रि में लगा रहे हैं और दिन में लगाएंगे तो क्या भोजन की दूसरी बार छूट है साधु को? ये विचार करने की बात है कि अगर दिन में तेल लगवा ले तो रात्रि भोजन तो नहीं हुआ, चलो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या दिन में साधु को दोबारा भोजन करने की छूट है? तो फिर दिन में लगवा सकते हैं, मतलब तेल लगाने का अभाव हो गया। अथवा ऐसा कहो कि भाई आहार करते समय अगर लगा दें तो ठीक है। देखो, बाल की खाल अगर निकालना हो तो फिर उसकी खाल की भी खाल निकाल सकते हैं। तर्क कुतर्क कहां तक के जा सकते हैं, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो आहार करते समय तेल लगाते लगाते करेंगे आहार क्या? और एक और इसके ऊपर दूसरा विचार ये करो कि करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, जो बारिश की झड़ियों में पेड़ के नीचे खड़े हैं उनके शरीर पर पानी लिप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका जवाब हाँ या ना में बताओ। पानी लिप्त हो रहा है तो फिर वो लेपाहार हुआ कि नहीं? और जो 6 महीने के लिए खड़े हैं और बारिश अगर 10 दिन लगातार गिरी है तो 10 दिन तक उनने आहार किया कि नहीं, दिन रात? तो इसलिए कुतर्कों के द्वारा साधु की निंदा करना कभी भी अच्छा नहीं है। ये क्या, ये कुतर्क करके मतलब, और उसके साथ साथ में तो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं। एक किताब निकली थी 1992 में, उसका नाम था श्रवण स्वरूप और समीक्षा। उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी थी। तो उसमें हो सकता है कुछ बातें सही हो, क्योंकि गलतियां तो इंसान मात्र से होती है, लेकिन उस गलती के प्रति सबके अंदर कषाय जागृत कराना, द्वेष भाव पैदा कराना, ये अपने लिए भी हानिकारक है और किसी के लिए हितकारक नहीं है। तो उसमें फिर ऐसी बहुत सारी, लौट के बुद्धू घर को आए, उसी किताब में लिखा हुआ था। जो साधु जंगलों में न रहकर शहरों में रहते हैं वो, उनकी स्थिति क्या है कि वो घर छोड़कर गए तो थे त्यागी बनने के लिए, माने गृहवासी से वनवासी बनने के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी, लेकिन जंगलों से घबरा गए। तो वो क्या कहावत है, वो जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बोले जंगल से जान बचा करके यहां शहर में आ गए साधु लोग, और फिर वापस विषय कषायों में फंस गए। ये भी एक तरफा नजरिया है, माने सोचने की कषाय पूर्ण दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो फिर यही बात दिमाग में बैठेगी, लेकिन दूसरी दृष्टि से विचार करें कि जो सुदत्ताचार्य थे, बड़े महान तपस्वी आचार्य और अवधिक ज्ञान के धारक थे, वो जब राजा मारीदत्त के शहर में पहुंचे तो पहले तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ ठहरूं। ठहरने के लिए उन्होंने स्थान देखा तो एक जगह श्मशान था, दूसरी जगह उपवन था। तो उन्होंने विचार किया कि उपवन में रागपूर्ण वातावरण है और श्मशान में बहुत विभत्स वातावरण है, और हमारे संघ में बहुत सारे छोटे बड़े हर प्रकार के साधु हैं, तो सबके लिए उचित स्थान ये नहीं होगा, न उपवन सबके लिए उचित होगा और न श्मशान उचित होगा। तो फिर वो उस शहर की वसतिका में जाकर के ठहरे। वसतिका का मतलब जो संत निवास पहले भी होते थे। अब इन लोगों की कल्पना ये है, जो मानते हैं कि साधुओं को शहर में आना ही नहीं चाहिए, इनकी कल्पना ये है कि वो तो जैसे हिम्मतनगर की सीमा जहाँ है उसके बाहर कुछ ऐसे निवास बना लेते थे। पुराने श्रावक बड़े विवेकी होते थे, वो ऐसे बाहर निवास बनाते थे, वहाँ साधुओं को ठहराते थे। ऐसी इनकी कल्पना है। वो भले 6 किलोमीटर आए आहार करने के लिए, साधु भले 6 किलोमीटर आहार करने के लिए आ जाए, लेकिन रहेंगे वहां बाहर। तो ये भी कल्पना मात्र, हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है और प्रूफ नहीं है इसका कोई, इसका ये कोई सिद्धांत नहीं है और कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलने वाला शास्त्र में आपको। ये बात अलग है कि कभी कोई साधु जंगल से मीलों दूर से आ जाए आहार के लिए तो आ जाए, लेकिन ये कानून नहीं है कि दूर से ही आए। अब कोई साधु इतने बीमार है, सल्लेखना में स्थित है, वो 6 किलोमीटर आएंगे क्या? मतलब कितनी नादानी भरी बात है ये कि साधु उतने ही दूर रहें, 6 किलोमीटर दूर, उसके अंदर आएंगे तो फिर उनका संयम नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक ही स्थान पर रहने वाले दो जीव